ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। आज अतिरिक्त 334 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पुष्टि होने के बाद नेपाल में कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 2634। कृषि उत्पादन की ढुआनी में आई अवरोध को हटाने और लॉकडाउन के कारण किसानों के ऊपर पड़े असर के विषय में गंभीर होने का गृह और कृषि तथा पशुपंछी मंत्रालय को संसदीय समिति ने दिया निर्देशन। एसईई के साथ ही 11वीं और 12वीं की परीक्षा के विषय में एक हफ्ते के अंदर निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल का कथन। कोरोना नियंत्रण और इलाज के लिए अर्थ मंत्रालय अब तक किया 6 अरब 9 करोड़ रुपयों का निकासा और विश्वभर में कोरोना से हुई अब तक 388,000 से अधिक की मौत। अब समाचार विस्तार से। आज अतिरिक्त एक व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण से होने की बात पुष्टि होने के बाद नेपाल में मरने वालों की संख्या 10 पहुंची है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ विकास देवकोटा ने कहा कि इसी जेठ 20 गते पाल्पा के पूर्व खोला के 45 वर्षीय पुरुष की मौत कोरोना वायरस की वजह से होने की बात पुष्टि हुई है, जिसके बाद वायरस की वजह से नेपाल में मरने वालों की संख्या 10 पहुंची है। उन्होंने कहा कि मृतक पुरुष भारत से स्वदेश वापस लौटकर स्थानीय क्वारंटीन में रहने के दौरान सांस लेने में दिक्कत होने के बाद उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी तरह आज अतिरिक्त 334 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण होने की बात पुष्टि होने के बाद नेपाल में कुल संक्रमितों की संख्या 2634 पहुंची है। इसी तरह आज अतिरिक्त 12 लोग इलाज के बाद ठीक होने के बाद नेपाल में कोरोना से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 290 पहुंची है। प्रतिनिधि सभा की कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति ने लॉकडाउन के समय में अत्यावश्यक सामानों की ढुआनी को सहज बनाते हुए कृषि आपूर्ति और दैनिक जीवन को सहज बनाने का सरकार को निर्देश दिया। समिति की आज हुई बैठक ने कहा कि सब्जी फल फूल और खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामानों की ढुआनी में रूकावट आने से किसानों को समस्याएं झेलनी पड़ रही है, इसलिए किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को ढुआनी को सहज बनाने का सरकार को निर्देश दिया। संसद की महिला तथा सामाजिक समिति ने स्वास्थ्य के जोखिम में रहे लोगों को सहज सर्वसुलभ और नियमित रूप में आवश्यक चेक जांच करने की अनिवार्य व्यवस्था मिलाने का सरकार को निर्देश दिया। समिति की आज हुई बैठक ने सरकार को ऐसा निर्देश दिया। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल ने कहा कि एसई और कक्षा 11वीं 12वीं की परीक्षा के विषय में एक हफ्ते के अंदर निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा पत्रकार संजाल ईजोन द्वारा आज आयोजित वर्चुअल संवाद में उन्होंने कहा कि परीक्षा के विषय में अलग अलग 3 विकल्पों पर अध्ययन किया जा रहा है और इस विषय में एक हफ्ते के अंदर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। कोविड-19 नियंत्रण और इलाज के लिए अब तक 6 अरब 9 करोड़ 30 लाख रुपयों का निकासा किया जा चुका है। रेडियो नेपाल के साथ आज बातचीत करते हुए अर्थ मंत्रालय के प्रवक्ता उत्तम कुमार खत्री ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोष में अब तक 2 अरब 31 करोड़ 55 लाख रुपये जमा हुए हैं। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए प्रदेश नंबर 1 की सरकार ने मोरंग के गोठगांव में 200 आइसोलेशन बेड संचालन में लाया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय टीचिंग हॉस्पिटल में 200 क्षमता वाली आइसोलेशन बेड का संचालन आज से होने की जानकारी सामाजिक विकास मंत्री जीवन घिमिरे ने दी। इसी तरह झापा तथा सुनसरी के चतरा में 200 आइसोलेशन बेड संचालन में लाने के लिए प्रदेश सरकार ने काम को आगे बढ़ाया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
14-15 14-15 14-15 14-15
बजारमा नयाँ के थाइन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरु सस्तो सारै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15 14-15 14-15 14-15 मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संघीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन पारित किया है। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 के मुताबिक परराष्ट्र और संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय से किए जाने वाले कामों का अनुगमन और मूल्यांकन कर आवश्यक सुझाव एवं निर्देशन सहित समिति को कार्यदेश मिली। समिति ने एक सालों के अंदर किए गए काम कार्यवाहियों के विषय में वार्षिक प्रतिवेदन आज पारित किया। रुकुम पश्चिम की चौर जहारी नगरपालिका में इसी जेठ 10 गते इंटरकास्ट मैरिज के विषय को लेकर 6 लोगों की हुई हत्या की घटना में शामिल अभियुक्तों को और अतिरिक्त 10 दिन कस्टडी में रखकर अनुसंधान किया जाएगा। अनुसंधान करने के लिए जिला अदालत रुकुम पश्चिम ने कस्टडी की अवधि को अतिरिक्त 10 दिनों के लिए बढ़ाया है। मृतक के परिजनों ने 20 लोगों के ऊपर किटानी जाहिरी दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में लेकर अनुसंधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। वहीं अन्य 2 अभियुक्त अभी भी फरार है। प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समिति की बैठक ने इंजीनियरिंग परिषद आयन 2055 के संशोधन करने के लिए बने विधेयक 2076 पर सरकार वाला निकायों के साथ विचार विमर्श शुरू किया है। बैठक में सभापति कल्याणी कुमारी खड़का ने कहा कि विधेयक को समृद्ध और प्रभावकारी बनाने के लिए सरकार वाला निकायों के साथ विचार विमर्श शुरू किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार वाला निकायों और विज्ञों के साथ के बृहत विचार विमर्श बाद परिमार्जित कर विधेयक पारित की जाएगी। सर्वोच्च अदालत की पूर्ण बैठक से कोरोना वायरस के जोखिम को न होने देने के लिए जारी बंदाबंदी की स्थिति में अतिरिक्त 8 प्रकार के मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय किया है। प्रधान न्यायाधीश सहित सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों की बैठक से अतिरिक्त 8 किस्म के मुकदमे की सुनवाई शुरू करने का निर्णय किया। ये जानकारी सर्वोच्च अदालत के उप रजिस्ट्रार देवेंद्र ढकाल ने दी। धरान में आज सुबह आग लगी होने से 2 लोगों की मौत हो गई। धरान 15 की नरबहादुर श्रेष्ठ के घर में लगी आग में झुलसकर 87 वर्षीय धनमया श्रेष्ठ और 58 वर्षीय अशक्त सीता श्रेष्ठ की मौत हो गई। ये जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस के कहर से लड़ रहे दुनिया भर के देशों में संक्रमण के मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। समय के साथ साथ नए मामलों की रफ्तार भी तेज हो गई है। वैश्विक स्तर पर जानलेवा वायरस के कुल मामलों की संख्या 66,22,000 से अधिक पहुंच चुकी है, जबकि 3,88,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,09,000 से अधिक पहुंच गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.7 और न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। आज अतिरिक्त 334 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पुष्टि होने के बाद नेपाल में कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 2634। कृषि उत्पादन की ढुआनी में आई अवरोध को हटाने और लॉकडाउन के कारण किसानों के ऊपर पड़े असर के विषय में गंभीर होने का गृह और कृषि तथा पशुपंछी मंत्रालय को संसदीय समिति ने दिया निर्देशन। एसईई के साथ ही 11वीं और 12वीं की परीक्षा के विषय में एक हफ्ते के अंदर निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरियाल का कथन, कोरोना नियंत्रण और इलाज के लिए अर्थ मंत्रालय अब तक किया 6,09,00,000 रुपयों का निकासा और विश्वभर में कोरोना से हुई अब तक 3,88,000 से अधिक की मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए आज्ञा। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।